Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Surasa ne phir dugna, aap logo ne suna hai ye kahani to bahut bahar. तो बहुत सुना। जब हनुमान ने देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन्होंने बुद्धि लगा ली है, क्योंकि उनके पास बुद्धि था इसलिए लगाई। हमारे पास बुद्धि नहीं हो, उसके लिए बुद्धि नहीं है, और के लिए तो है, तो उन्होंने तुरंत बुद्धि लगा लिया। अब इसके मुख को पार नहीं पाएंगे शरीर बढ़ाकर, हाँ तो क्या करें। बोले, मशक समान कपि रूप धरई, छोटा सा मच्छर बन गए। हाँ, भगवान हनुमान जी को काम आ गया भगवान की सृष्टि। यदि भगवान ने मच्छर की सृष्टि न किया होता, आज हनुमान को अपने जान बचाना मुश्किल संभव होता सुरसा के सामने। मच्छर की सृष्टि परमात्मा की है, और उस परमात्मा के सृष्टि का उपयोग किया हनुमान जी ने, और मशक समान कपि रूप धराई, और फट उसको कहा कि देख, घुस गए उसके मुख के अंदर। बोले, ले खा ले, तेरे मुख के अंदर मैं घुस गया हूं, चबा ले अब। अब उसका इतना बड़ा मुख था, वो चबाने लगी तो कहां होगा, कुछ नहीं। तो हनुमान जी एक कोने में जाकर बैठ गए, कहीं चिपक गए वो। कभी कभी खाना खाने के बाद मुख शुद्धि के लिए धाना वगैरह खाते हो ना, बरियाली वगैरह, तो चबाते चबाते किसी दांत के कहीं खोच में जाकर वो फंस जाता है, बरियाली है ना, फंसा ही रहता है। कुल्ला करो तो नहीं जाता, फिर एक तिनका लेकर जबरदस्ती निकालोगे तभी जाएगा। हनुमान जी सुरसा के मुख के अंदर बरियाली जैसे फंसता है, सुरक्षित बैठ गए। सुरसा ने देखा कि अब तो खा गए, निकल गया, अब वाह है नहीं अब। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो कान से निकल गए। हनुमान जी बोले, तूने खाया कि नहीं मुझे? बोले, हां खाया तो सही, अब तो मैं जाऊंगा राम के काम करने के लिए। तब सुरसा, हाँ सुरसा कोई राक्षसी नाम था वो, लेकिन देवताओं के प्रायोजित थी वो, है ना, रामायण में साफ लिखा है। कोई हनुमान के दुश्मन के रूप में नहीं, राम के दुश्मन के रूप में नहीं, हनुमान की बुद्धि परीक्षा के लिए नाग माता देव माता शब्द आया है। वो कहा कि हनुमान तुम बहुत बुद्धिशाली हो, तुम अपने काम करने में सफल हो जाओगे, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो हनुमान जी चले गए। इतनी लंबी कथा कहां से आ गई भाई, मशकत्वम नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता। हनुमान जी को मच्छर के रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं है, और आप लोगों को यदि पूछा जाए मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो चाहोगे कि नहीं, मरने के बाद मच्छर होकर पैदा होना चाहोगे कि नहीं, बोलो ना। क्यों? हनुमान जी को मच्छर होने में कोई आपत्ति नहीं रही, तो तुम्हें क्यों आपत्ति होगी, बोलो। देखो ये प्रासंगिक है। हनुमान जी का शरीर बांदर का हो चाहे मच्छर का हो, अंत में आया है हृदय परमात्मा में लगा हुआ है। यदि हृदय राम में लगा हुआ है हनुमान जी का, वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य से देव थे, एकादश रुद्र थे, तब भी उनका मन भगवान में लगा था। मनुष्य थे तो भी उनका मन भगवान में लगा था, बंदर हो गए तो भी उनका मन कहां लगा है, राम में लगा है। और उस समय मशक हो गए, मच्छर हो गए, तब भी उनकी वृत्ति उनका मन राम के चरण और राम की सेवा में लगा हुआ है। तब जब मन राम की सेवा और राम के चरण में लगता है, परमात्मा में लगता है, तो शरीर से क्या लेना देना है बोलो? आप यही चाहो कि शरीर मरने के बाद दूसरे जन्म में शरीर जो हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन शिव चरण में लगे रहे, यही हम चाहते हैं। हमको मच्छर से कोई लेना देना नहीं, मच्छर के शरीर से कोई हनुमान को फर्क पड़ा बोलो? मच्छर होने पर हनुमान जी को क्या, भगवान राम के चरण में जो भक्ति भाव था वो खंडित हुई क्या? यदि वृत्ति खंडित होगी तो मनुष्य हो गए तो भी वृत्ति खंडित होती, अभी हो ही रही है, अभी मनुष्य है तो कौन सा बहादुरी कर ली है, वृत्ति खंडित हो रही है कि नहीं? और जबकि हनुमान जी मच्छर हो गए तो भी उनकी वृत्ति खंडित नहीं है। नरत्वम देवत्वम नगमन मृगत्वम मशकता पशुत्वम कीटत्वम, ये देखो, चलो मच्छर तो होना नहीं चाहोगे, मरने के बाद गधा होना चाहोगे कि नहीं, पशु होना चाहोगे कि नहीं बोलो? नहीं चाहोगे? बैल होना चाहोगे कि नहीं? नंदी को जब फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा बोलो? नंदी को फर्क पड़ा? नंदी वास्तव में पहले मनुष्य थे, देव किसी की ऋषि के श्राप से वो नंदी होकर पशु होकर पैदा हुए, लेकिन शरीर नंदी का पशु का होने पर भी उनका मन भगवान शिव से अलग नहीं हुआ है। पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है, हनुमान को मच्छर के शरीर में भी राम भक्ति यथावत चल रही है, पशुत्वम नंदी को पशु के शरीर में भी शिव भक्ति यथावत चल रही है। भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं बोलो? भगवान विष्णु घोड़ा हुए कि नहीं? क्या बात है, हुए, पुराण में स्पष्ट लिखा है, हयग्रीव। अरे हयग्रीव अवतार है कि नहीं? क्योंकि एक हयग्रीव नाम का असुर था, उसने वरदान ये मांगी कि मुझे मेरे से ही मृत्यु हो, मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, अन्य किसी से नहीं हो। तेरे से ही का मतलब हयग्रीव से ही हो, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। अब उसने सोचा हयग्रीव केवल मैं हूं, मेरे वाला कोई दुनिया में हयग्रीव है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु, तेरे जैसे हजार हयग्रीव तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तो जानते थे ना ये असंभव नहीं है। अब उसने ये सोचा कि मेरा हयग्रीव, मेरे अलावा कोई हयग्रीव है ही नहीं, इसलिए अब मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि हयग्रीव को कैसे मारें। तो भगवान हयग्रीव नहीं बनेंगे तो उसको नहीं मार सकते। यदि भगवान नारायण के नारायण ही रहे, चतुर्भुज के चतुर्भुज ही रहे, तो हयग्रीव को नहीं मार सकेंगे। तब किसी अन्य राक्षस से वो युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद भगवान नारायण थक के चूर हो चुके थे, तो उन्होंने अपने धनुष बाण ड्यूड़ी में रखा, यहां रखे, ऐसा टिकाया और सो गए। तो उसी समय देवताओं ने कहा ये दीमक को, दीमकों को, देवी भागवत में कथा आती है ये, दीमकों को कहा कि तुम जाओ, सब जाकर वो जो धनुष बाण है ना जिस पर उन्होंने गर्दन टिका के रखा है, उसके रस्सी को चाट कर तोड़ डालो। दीमकों ने कहा कि ये तो भगवान नारायण है, आराम कर रहे हैं, उनका निद्रा भंग हो जाएगा, पाप लगेगा। नहीं नहीं नहीं, तुमको उससे भी ज्यादा पुण्य लगेगा, तुम चिंता मत करो। बोले पहले तो मना करते रहे दीमक ने, पुराण में लिखा देवी भागवत में, यहां ध्यान देना, मना करते रहे दीमकों ने। बाद में कहा कि नहीं, हमको क्या मिलेगा बोलो, यदि हम जाएंगे और धनुष बाण की रस्सी को चाट कर खत्म कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा। देवताओं ने कहा कि तुम लोगों को जो हमारे लिए हवन करेंगे ना पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, तो स्वाहा करते समय में जो हाथ में चरु लेकर कुंड में डालते हैं उससे समय जो नीचे गिरता है ना, वो सब तुम्हारे मिल जाएगा। बस दीमकों ने कहा कि तब तो बढ़िया है, हम कर देंगे वही काम। देवताओं को अर्पण किया हुआ भाग भी हमको मिलता है, वो यज्ञ शेष तुम्हारा भाग है, जाओ। तो सब दीमक मिलके गए और रस्सी को चाट लिए। चाटते जैसे रस्सी का वो धनुष का रस्सी टूट गया, वो धनुष तो ऐसा झटका लगा कि भगवान नारायण का गर्दन कट के गया, समुद्र में गिर गया। लेव जी गिर गया, अब क्या करें। तो तुरंत इंद्र आदि आए सब, अरे रे रे रे, रे। तो वहां ऐरावत हाथी कुछ था होगा, कोई नहीं, वो अश्व होगा, उच्च श्रवा आदि पहाड़ से उसका गर्दन काटा और लगा दिया, तो भगवान जिंदे हो गए। वैद्य तो थे ही, ऑपरेशन करने वाले देवताओं का वैद्य कौन, अश्विनी कुमार हैं, देवता तो थे ही, वो तुरंत सर्जरी कर दी। बस भगवान तो अब क्या हो गए, हयग्रीव हो गए, हयग्रीव, हय नहीं हुए, हयग्रीव हो गए हैं। देखो हनुमान जी क्या हुए हैं, ना सॉरी माने गणेश जी का क्या हो गए, वो करी ग्रीवा, हाथी ग्रीवा, शरीर सब ठीक है लेकिन मुख दूसरे का है। भगवान नारायण जब हय ग्रीव हो गए, बोले इसमें भी कोई राज है, चलो। तो उसी हयग्रीव रूप से फिर हयग्रीव राक्षस के साथ भगवान नारायण ने युद्ध किया, तो हयग्रीव द्वारा ही हयग्रीव की मृत्यु हुई। तो दो हयग्रीव हुए, एक राक्षस हयग्रीव, दूसरा साक्षात भगवान हयग्रीव। तो भगवान जब घोड़े होने में कोई आपत्ति नहीं, तो हमको क्या आपत्ति भाई, बोलो हमको क्या आपत्ति है, भगवान को आपत्ति नहीं हुई। पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम्। शंकराचार्य जी कहते हैं हे शिवा, यदि कीटत्व कीड़ा भी बनना पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, अभी तो मैं मनुष्य हूं। लेकिन इस मनुष्य जन्म के बाद यदि कीड़ा भी बनना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिच्छू को तो कीड़ा ही तो कहेंगे ना, बोलो कहेंगे कि नहीं। बिच्छू पशु कोटि का है कि पक्षी कोटि का है कि मनुष्य कोटि का है कि कीड़ा कोटि का है, कीड़ा कोटि का है ना। अब वो भी भगवान शिव के श्रृंगार में काम आ गया कि नहीं, कर्ण कुंडल बन गए भगवान शिव के, कोई फर्क नहीं पड़ता है देख लो। लेकिन वृत्ति भगवान की होनी चाहिए, शरीर के मतलब ध्यान मत दो, शरीर जो कुछ भी हो। शंकराचार्य जी वही आगे कहते हैं, विहगत्वम पक्षी, पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं है भाई, पक्षी होने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे काक भुसुंडी क्या थे हैं? काक भुसुंडी मनुष्य थे कि पशु थे कि कीड़े थे कि क्या थे, पक्षी, विहग आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे। उनको पक्षी शरीर प्राप्त होकर कोई अड़चन रहा? श्रवण मनन निधि ध्यासन करने में उनको कोई रुकावट हुई? नंदी को पशु शरीर होने में कोई रुकावट हुआ शरीर से? कोई रुकावट नहीं। व्यगत्वम पक्षी का शरीर मिलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गरुड़ पक्षी है कि पशु है? और भगवान की सेवा करने में वह समर्थ हुआ कि नहीं, वाहन बन गया कि नहीं? नंदी पशु है, शिव जी की सेवा करने में समर्थ हो गया कि नहीं? और तुम हम मनुष्य होकर क्या कर रहे हैं? हैं? क्या कर रहे हैं? जीव जी की सेवा करते भी पूरा नहीं हो रहा है। शिव जी की तो छोड़ दो, जीव जी ये सब क्या है? जीव जी है, पत्नी पति की सेवा करते करते थक जाती है, पति पत्नी की सेवा फरमाइश पूरा करते करते थक जाता है, मां बच्चे की सेवा करते करते थक जाती है। हा? बोलो ये सब क्या है? किनकी सेवा कर रहे हैं? जीव जी की। और हम मनुष्य होकर भी शिव जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग नंदी क्या शिव जी को लेकर ढो के चले जा रहे हैं? आहा। और पक्षी होकर भी गरुड़ भगवान को ढोकर चले जा रहे हैं, मयूर पक्षी होकर भी षणमुख भगवान कार्तिक को लेकर चल रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है पक्षी होने पर? भगवान की सेवा करने में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई अड़चन हो रहा है? हैं? नहीं हो रहा है। अरे बिच्छू जहरीला होने पर भी भगवान शिव का कुंडल बन रहा है, क्या सुंदर है। सर्प जीव कीड़ा होकर भी देख लो, चंद्रमा देव हुए कि नहीं? देवत्वम, और वह भगवान शिव के मुकुट की शोभा, भगवान शिव के सिर की शोभा बन गया कि नहीं? वो तुम कहोगे कि नहीं महाराज, भगवान की सेवा के लायक हम नहीं हैं, हम तुमसे पूछते हैं, तुम कहते हो ना भगवान की सेवा लायक हम नहीं हैं, हम गए गुजरे हैं, है? हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुमने ऐसे कौन से अपराध कर ली जो भगवान की सेवा लायक नहीं? चंद्रमा ने जो अपराध की है क्या वैसा अपराध तुम लोगों ने कर चुके हो क्या? चंद्रमा ने कौन सा अपराध किया था पता है? हैं? अपने गुरु के पत्नी माने पत्नी को ही, गुरु माता को ही पत्नी बनाया कि नहीं? कितना नीच कर्म कर लिया उसने, हैं? किया कि नहीं बोलो ना इतिहास। बुद्ध किससे पैदा हुआ है? और बुद्ध की मां किसकी पत्नी थी? हैं? चंद्रमा की पत्नी थी, बृहस्पति की पत्नी थी। बृहस्पति कौन थे? चंद्रमा के गुरु। और इतना निकृष्ट कर्म किया, इतना पाप कर्म किया, फिर भी शरीर से उसने जो कुछ भी किया लेकिन मन भगवान शिव में लगा हुआ होने के कारण वृत्ति से वह भगवान शिव के भक्ति करने में समर्थ हुआ। श्राप मिल गया, कलंकी है वो, कलंकित है, निकृष्ट कर्म किया, फिर भी भगवान के शोभा का बन गया कि नहीं? भगवान के प्रसन्नता का पात्र बना कि नहीं? मुझे लगता है वो उसकी वृत्ति ठीक है। देवत्व शरीर से कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला है, मन ठीक रखना, वृत्ति ठीक रखना, वृत्ति भगवान के चरण में होनी चाहिए। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हृदय है। हृदय ठीक रखो, हृदय से काम करो, सेवा भगवान की सेवा, संसार की सेवा मन लगाकर न भी करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा की सेवा मन लगाकर करो। नरत्वम देवत्वम नगवन मृगत्वम मशकता, मृग हमने मृग के बारे में कह तो दिया, दो प्रकार के मृग हैं, लेकिन भगवान शिव के जो चतुर्भुज हैं ना रूप, चार हाथ वाले भगवान शिव के, एक हाथ में ये दो उंगलियों के बीच में मृग है। मैंने पहले दिन भी इसकी व्याख्या कर दिया था। मृगधरम भगवान शिव के ध्यान मंत्र में आता है कि नहीं? मृगधरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये दंतिक्त्वाकृत सुंदराम वरधरे त्रैलोक के सहारे हरे। मृगधरम भगवान शिव मृगों को धारण करते हैं, उनके लिए प्रिय है वो। पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम, आदि पद से जो उक्त हैं, जिसका नाम लिया पशुत्व देवत्व, इसके अतिरिक्त भी यदि कोई योनियां हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देव से भिन्न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राक्षस भी तो देव भिन्न है ना, राक्षस किस योनि, पशु में आएंगे कि पक्षी में आएंगे कि मनुष्य में आएंगे कि देवता में आएंगे, राक्षस हैं असुर हैं। लेकिन शरीर की दृष्टि से राक्षस और असुर होने पर भी मन भगवान के चरण में लगता है तो राक्षस होने में कोई आपत्ति नहीं। प्रहलाद का शरीर राक्षस का शरीर है। हां, प्रहलाद का शरीर किसका है, जन्म किस कुल में हुआ है? जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन मन भगवान में लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस कुल में पैदा हो तब जाकर भगवान की भक्ति करें, ये कुल वगैरह का कोई महत्व नहीं है। किस जाति में पैदा हो तब भगवान की भक्ति हो, शरीर से कुछ लेना देना नहीं भाई। पुरुष शरीर हो कि महिला शरीर हो, शरीर से कोई मतलब नहीं है। पार्वती पुरुष शरीर वाली थी कि महिला शरीर वाली थी, हा? शरीर से कुछ लेना देना नहीं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं, ये हैरान करते हैं प्राय करके, क्योंकि हम नेपाल में, जहां मेरा आश्रम है गंडकी नदी के किनारे और शालिग्राम क्षेत्र है, वो गंडकी नदी में शालिग्राम आते हैं और वहां शालिग्राम मिलते हैं, और गंडकी नदी का अंत वहीं होता है। मुक्तिनाथ दामोदर कुंड से निकल के जो गंडकी नदी आती है, वह देवघाट जहां हमारा आश्रम है वहां तक गंडकी नदी उसका नाम रहता है। जब दूसरी बड़ी नदी के साथ वह मिलती है तो दो नदी मिलकर उसका तीसरा नाम नारायणी हो जाता है, गंडकी नाम खत्म हो जाता है। त्रिशूली और गंडकी दोनों मिलकर, संगम में दोनों मिलने के बाद फिर उसके आगे नारायणी होती है, उसका नाम नारायणी होता है। और नारायणी कहां तक है तो बिहार में पटना के पास सोनपुर तक वह गंडकी नारायणी रहती है, और फिर वहां भागीरथी के साथ मिलने के बाद वो नारायणी नाम भी खत्म हो जाता है। तब फिर वहां नाम क्या होता है उसका, सभी नदी मिलकर सभी का नाम एक ही होता है, भागीरथी। सारे नदी भागीरथी में मिलते हैं, अपना नाम और रूप समाप्त करके समुद्र में पहुंचते समय में सभी नदी का नाम क्या हो जाता है, भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा हो जाता है। कोई नदी अपने नाम और रूप में समुद्र में नहीं पहुंचते, शुरू से अंत तक एक ही नाम रहे, ऐसा नदी केवल दुनिया में एक ही है। ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलते समय तो ब्रह्मपुत्र के रूप में मिलता है, लेकिन जहां उद्गम हुआ और तिब्बत और चाइना में, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, दूसरे नाम से वहां, और भारत में आने के बाद उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिलता है। तो जहां उद्गम से समुद्र पर्यंत सतत प्रवाह के रूप में एक ही नाम और एक ही रूप में प्रवाहित होने वाली नदी भागीरथी गंगा, वहां गोमुख से लेकर सागर तक उसका नाम भागीरथी ही रहता है और सबका नाम बाधित हो जाते हैं। अलकनंदा नाम गंगा में मिलने के बाद बाधित हो गया, ये देख लो। जमुना का नाम इलाहाबाद में पहुंचकर गंगा में मिलने के बाद जमुना बाधित, उसके आगे जमुना कई नाम नहीं है, प्रयाग तक ही जमुना है, सरस्वती प्रयाग तक ही है, वहां मिल जाने के बाद भागीरथी मिलने के बाद उसका नाम बाधित, आगे फिर गंगा, सब गंगा गंगा। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवापि अभिगच्छन्ति तथा नाम रूपम विहाय, गीता में कहा ना उसे, नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् सदा त्वत्पादाब्जम्। सदा त्वत्पाद अब्ज, पाद प्लस अब्ज माने अब्ज माने अप माने जल, उससे उत्पन्न हुआ वाक्य क्या हुआ अब्ज, किसका नाम है कमल, तो पाद कमल चरण कमल, पादाब्ज का अर्थ क्या हुआ पाद माने चरण, तो पादाब्ज यानी तुम्हारे आपके चरण कमल। सदा त्वत्पादाब्ज स्मरणम, आपके चरण कमल की स्मृति स्मरण, स्मरण कहां किससे होता है बोलो, स्मरण हृदय से होता है, स्मरण किससे हृदय से, चित्त से, हृदय में चार जो भाग हैं उनमें से जो चित्त है वह स्मृति चित्त में सन्निहित है, तो पादाब्ज स्मृति यानी हृदय परमानंद लहरी, उस हृदय में भगवान शिव की जो स्मृति है वही आनंद का तरंग बन जाता है। जिस समय शिव चरण का स्मरण होगा, स्मरण कर्ता को बिना विषय आनंद का अनुभव होगा, और जिस समय भगवान शिव का स्मरण न करके किसी और का स्मरण करोगे तो वो आनंद तरंग हृदय में, वो आनंद का तरंग नहीं होगा। किसी वियोगता व्यक्ति का स्मरण करोगे मरे हुएओं का, क्या हृदय में आनंद की अनुभूति होगी है? और किसी प्रियतमा का या प्रिय का स्मरण करोगे तो क्या वो आनंद की अनुभूति होगी, उत्तेजना बढ़ेगा, आनंद की अनुभूति क्या होगा, विक्षेप बढ़ेगा और विक्षेप बढ़ेगा, व्यक्ति बेचैन हो जाएगा।